ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस कुत्तों को पालने के बड़े प्रेमी होते हैं, उन्होंने विश्व किशोर को स्पेशल पालना दी। यज्ञ के आग में इसी बात का झगड़ा हुआ था। तो गौतम ऋषि भी है, गौतम ऋषि की पत्नी भी है। विश्व किशोर तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा हुआ, प्रकाशमणि दादी बच्ची हुई, फिर जगदम्बा की बात कहां से पैदा हो गई? ये जगदम्बा का टाइटल क्या साबित करता है? अरे इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ क्या संबंध जोड़ा जो जगदम्बा का टाइटल लेके बैठ गई? अरे हाँ बस यही पाप हो गया।
छोटी मंदिर सच्ची गीता कैसे है अगर वो बंधन में है और अपवित्र है तो?
सच्ची गीता कैसे है?
गीता गीता है ना छोटी माँ, झूठी एक सच्ची।
अभी सारी दुनिया झूठी है या सच्ची है? सारी दुनिया पति दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं, तो सारी दुनिया क्या है? झूठी। तो झूठी दुनिया है तो इसमें कोई एक चैतन्य आत्मा झूठी दुनिया के अंदर सच्ची गीता हो सकती है? अभी तो है झूठी गीता चारों ओर। अरे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में जब तक न बैठे तब तक कैसी गीता है? झूठी गीता है। झूठी गीता को ही शिव बाप सच्ची गीता बनाने आया हुआ है। यज्ञ के आदमी भी गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे, जो आदमी सो अंत में भी ऐसा होगा।
लेकिन कि दो सीता है, एक रावण उठा के ले जाता है, एक जो उसमें में निवास करते हैं, तो छोटी में तो वो वाली सीता।
अभी तो अभी अभी समझाया, बुद्धि में नहीं बैठा। अभी तो बताया योगाग्नि में निवास तब करे जब योग का अर्थ समझे, बाप की पहचान हो। जब बाप की पहचान ही नहीं हुई है तो योग काएगा? इसको याद करती है ज्योति बिंदु को याद करती, ब्रह्मा बाबा को याद करती। अब ब्रह्मा बाबा गीता का भगवान समझ के याद करती तो फिर झूठेगी?
उनको उनसे प्यार भी बहुत है आपने, और उनको अपने बहुत कुछ बता
दिया। अरे तुम्हें अपने बाप से प्यार नहीं है? तुम्हें ईर्ष्या आती है अपने बाप से? अरे सभी कन्याओं को अपने बाप से प्यार होता है, ये कोई खराब बात है क्या? नाम बाला किया कन्या वो जो अपने माँ बाप का नाम बाला करे, पालोकी का नाम बाला करे, ये तो अच्छी बात है। और
योगिनी
माँ
तो अष्टदेव वाले राम वाले जैसे भाई बन गए
हैं,
जैसे भाई।
हाँ
कैसे हो? दूसरी मनता है ना जो सूर्यवंशी माँ बन गई, तो बाबा ने बोला ना जैसे अष्टदेव राम वाले के भाई, अष्टदेव जो है ना
जो आपस में भाई
भाई है ना,
सूर्य अभी तो मातृता
दूसरे मन के है ना।
तो अभी अभी सूर्य और सूर्य के आठों बच्चे प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। अरे पहले उसका नंबर कौन बोला था? हाँ सुनो, शास्त्रों में रावण के बाप का नाम आया कि नहीं आया? क्या आया? विश्रवा। कैसी श्रवण कीर्ति है उसकी? विमाने विपरीत, जिसकी कीर्ति विपरीत हो गई, ऐसा कुल पैदा हो गया उससे। तो रावण का भी बाप दे अभिमान आया ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्रह्मा बाबा की जो कीर्ति है वो एडवांस पार्टी आने के बाद कीर्ति घट गई या बढ़ गई? है घट गई। तो रावण का बाप कौन हुआ? विश्रव। भी माने विपरीत, सर्वा माने श्रवण कीर्ति। शास्त्रों में जो भी बातें हैं कहां की यादगार है? यहां संगमित की यादगार है। आगे
सत्यक्षरम सुंदरम का अर्थ क्या
है? सत्य माने सत्य, जो सत्य है वही सुंदर है। चेहरा सुंदर दिखाई पड़ रहा है और झूठ ही झूठ अंदर भरा हुआ है तो दुखदाई होगा कि सुखदाई होगा? दुखदाई हो जाएगा। वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। सत्य को भगवान कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। दूसरा भगवान नहीं हो सकता। जिसमें सच्चाई भरी हुई है जितनी, उतना ही भगवान का अंश है उसमें, भगवान के नजदीक है। चेहरे सुंदर हैं, लेकिन अंदर से कूट कूट के झूठापन भरा हुआ है, छल छिद्र कपट भरा हुआ है, वो भगवान के नजदीक नहीं हो सकता। उसे सुंदर हम नहीं कहेंगे, वो तो भोंडा है, भले चेहरा सुंदर है। दूर ही रहना चाहिए। अगर चेहरे के आधार पर आकर्षित हो गए तो धोखा मिलेगा या प्रीति मिलेगी? धोखा मिलेगा। और कल्याणकारी तो हो ही नहीं सकता जो सत्य नहीं है। सत्य है वो ही सत्य है जो कल्याणकारी है। गाय जा रही है, कसाई पीछे से आ रहा है गरसा लेकर के, कोई रास्ते में पड़ गया, गाय किधर गई? उसने कह दिया इधर चली गई। गई तो वो सीधी थी। तो ये झूठ है या सत्य है? है
झूठ है, लेकिन भलाई के लिए।
हाँ झूठ है,
नहीं सत्य है।
हाँ कल्याण किया, अपना भी कल्याण किया, दूसरे का भी कल्याण किया, तो वो झूठा नहीं है। जैसे माताएं हैं, बांधेलियां हैं, उनको वरदान मिला हुआ है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, उनको विश्वास बैठ गया, हमारा पूरा परिवार ईश्वर का बनेगा। अब वो झूठी बात बोल करके ईश्वरीय ज्ञान में चल रही है, तो झूठ है या कल्याणकारी है, सुंदर है या नहीं है? सत्य और झूठ की व्याख्या करने के लिए दो पार्टियां होती है, جج کے یہاں جاتی ہے کورٹ میں، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، یہی تو فیصلہ ہوتا ہے. تو کیا سب کو ہی جانتا ہے جھوٹا کیا ہے سچا کیا ہے؟ جھوٹ اور سچ کی پہچان سب کو نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہزاروں ہزار روپے دے کر کے وہ جج بنا کے بیٹھائے جاتے ہیں.
بابا جیسے رودر مالا کی پہلا جو مٹکا ہے اس میں برہما بابا کی مطلب سجن نارائن کی آتما پرویش ہوتی ہے، تو اس کے دوسرا جو مٹکا ہے اشٹ دیو کا دوسری، اس میں کیا دوسرا آدھر مورت تو پرویشتا ہوگا؟
اشٹ دیو ہیں، دیوتائیں آستک ہوتے ہیں یا ناستک ہوتے ہیں؟ دیوتائیں آستھاوان ہوتے ہیں یا ابھیشواسی آستھاوان ہوتے ہیں؟ تو جو آستھاوان دھرم ہیں وہ آٹھ ہیں. ان آٹھ دھرموں کے پوروج، سب سے پورو کی پہلی پیڑھی، وہ پوروج وہی اشٹ دیو ہے. وہ اشٹ دیو انتم جنم میں مایا سے پچھاڑ کھاتے ہیں نمبر وار یا نہیں کھاتے ہیں؟ نمبر وار پچھاڑ کھاتے ہیں. اور جب پچھاڑ کھاتے ہیں ہارتے ہیں، کیونکہ مایا کسی کو چھوڑتی نہیں. اتنا اہنکار کوئی بھی نہ کرے کہ ہم کبھی بھی مایا کے چمبے میں نہیں آتے. تو جو دوسرا مڑکا ہے وہ بھی مایا کے چمبے میں آیا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ضرور آتا ہے. تو جو جس دھرم کا پوروج ہوگا اسی میں جا کے گرے گا انتم جنم. پہلا جو مڑکا ہے، پہلا اشٹ دیو، وہ تو سوریہوں کا بیج ہو گیا، تو دوسرا کون سے ویسے کا بیج ہوگا؟ چندروش کا بیج ہوگا. اب چندروش کا جو بیج ہے اس میں پرویش کرنے والی آتما کون سی ہو سکتی ہے؟ سوریونسی جو آتما ہے، رام والی آتما، اس میں تو کرشن کی آتما پرویش کرتی ہے. کرشن کی آتما چندرونسیوں کا کیا ہے؟ ہیڈ ہے یا نہیں؟ ہیڈ ہے. تو ایسے ہی جو دوسرا مڑکا ہے انسویا جسے کہا، اس میں بھی کمزور آتما پرویش کرے گی یا پاورفل آتما پرویش کرے گی؟ پاورفل آتما پرویش کرے گی. ہاں ورتمان کے حساب سے پاورفل ہوگی، لیکن جو لاسٹ ریزلٹ نکلے گا، جیسے لاسٹ ریزلٹ میں شنکر والی آتما ہائی جمپ لگا کر کے بیل پر سوار ہو جاتی ہے، ایسے ہی انسویا والی آتما लास्ट में हाई जंप लगाती है, और जो चंद्रवंशी की मुखिया है उसको कंट्रोल में कर लेती है। आज में भी कंट्रोल किया था, क्या बोला बेतवाणी में, इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किसने किया था? तुम बच्चों ने इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया, अष्टदेवों के लिए बोला। तो सबसे बड़ी दादी को परदादी कौन हुई? माताओं की माता कौन हुई? अरे जगदम्बा, जगदम्बा चंद्रवंशियों की भी प्रैक्टिकल में हेड हो गई। वो पावरफुल पड़ जाती है संघ में।
जैसे बाबा फर्स्ट नारायण और सेकंड नारायण का आत्मा ना है ब्रह्मा, वो प्रोग्रेस है। तो सेकंड नंबर की जो अष्टदेव है ना, उसमें सेकंड नंबर की जो थर्ड नंबर की जो वो प्रवेश होगा क्या?
थर्ड नंबर का क्यों होगा? सेकंड में सेकंड नंबर का होना चाहिए, थर्ड नंबर का होना चाहिए?
सेकंड नंबर
तो चंद्रवंशी है,
वो तो फर्स्ट नंबर में प्रवेश है ना।
क्या
मतलब? वो तो बाप में प्रवेश है ना ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा बाबा जो है वो सतयुग का पहला प्रिंस बनता है ना। सतयुग में भी तो वो सूर्यवंशी है पहले। दूसरा जो आएगा नारायण वो इस्लाम वंश में कन्वर्ट होगा। लेकिन संगम युग में तो दो में मिलकर के परिवार बनता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश।
जैसे आठ आठ अष्टदेव है, आठ आधार मूर्त हो गए ना, आठ नारायण आठ जल्दी से। तो मेरे कहने का मतलब वो तो आधार मूर्त है, वो अष्टदेव के अंदर सारे मतलब नंबर पर प्रवेश हो गए।
मतलब तुम्हारा ये है कि सेकंड अष्टदेव में सेकंड अष्टदेव में इस्लाम धर्म वाला नारायण प्रवेश करेगा।
मतलब जैसे आठ गति चलती है
वो नहीं करेगा।
अब बताओ
ब्रह्मा जैसी जो आत्मा आत्माएं हैं उनमें से प्रवेश करना चाहिए ना।
हाँ जी,
दूसरा नंबर जो ब्रह्मा के बाद वाली ममता होगी वो प्रवेश करेगी, क्योंकि अष्टदेव तो अपने बच्चों को जन्म देंगे।
हाँ जी हाँ जी,
ब्रह्मा की जो ब्रह्मा के बाद वाला नंबर जो चंद्रवंशियों का वो प्रवेश करेगा।
ये अभी मुरली में अर्थ ने कहा था बाप ने भी ये पुराना भूत किया है, अब तुम बच्चे भी पुराना भूत खरीद करके देखो। बाप ने भी ये पुराना भूत लिया है,
प्रारब्ध किया,
पुराना भूत पुराना भूत।
अच्छा अच्छा, पुराना भूत लिया है। हाँ
बच्चे भी पुराना भूत खरीद करके देखो।
हाँ अभी अभी आज ही तो आया, आज ही तो वाणी में आया। ब्रह्मा बाबा लांगबूट है, यह ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा उम्र वाला कोई और लांगबूट है?
प्रजापिता
लांगबूट है, खरीद के देखो। है पैसा इतना?
बाबा यदि की आदि में सृष्टि का सूर्यास्त होता है तो सारी बीज जो है चैतन्य बीज वो किसी दादा वापस चली जाती है। जो भी चैतन्य बीज है सृष्टि के वो सूर्यास्त के समय सिंह हैदराबाद में होती है। जो नौ लाख आत्माएं जो होती है इनको यज्ञ के आदि में ज्ञान मिला है सारा। लेकिन उस समय बाबा राम बाप की आत्मा पश्चिम बंगाल में होती है जो मनुसृष्टि का बीज है।
हाँ
तो बाबा मनुसृष्टि के बीज के साथ कितनी आत्माएं थी? आठ थी, अष्टदेव साथ थे या 108 थी या सुवंशी का 12 ग्रुप साथ था? क्योंकि सारी नौ लाख आत्माएं तो बस सिंह हैदराबाद में थी।
एकदम सृष्टि के आदि में जो परिवार बनेगा सूर्यवंशियों का, जब माला बनेगी तो कितनों की माला बनेगी? हा?
आठ परिवार आठ के अष्टदेव तो होंगे ना परिवार,
अष्टदेव संपन्न बनते हैं। जो अष्टदेव संपन्न बनते हैं वो एक इकाई तैयार होती है पारिवारिक, लेकिन जब विनाश होता है सृष्टि का, नई सृष्टि उदय होने वाली होती है, तब सूर्यवंशियों के ग्रुप में कितने होंगे है? माला के अंदर
बारह
ही होंगे,
मतलब पश्चिम बंगाल में बारह आत्माएं आपके साथ रही होंगी,
बिल्कुल रही होंगी। एडवांस शुरू होता है तो एडवांस में सबसे पहले साथ ही कितने बनते हैं?
चार भाई, राम के चार।
हाँ, वो ही भगवान के पैरवटी के बच्चे हो गए। जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, कहाँ की बात, संगम की बात।
बारह के अलावा जितने सारे बच गए वो सारे सिंधनवाद नहीं थे, सोलह बारह के अलावा जो भी बच गई आत्माएं जीव रूप आत्माएं जो हो गई वो सारी सिंधनवाद में थी।
हाँ जी, और
बाबा
पक्के
पक्के
सूर्यवंशी
भी बोलते हैं और फिर वे
विदेशी
भी होते हैं।
आखिरी जन्म में जाके माया आती है, त्रासी जन्म में थोड़ा ही खाती है।
जन्म में तो जो मतलब पहला है अष्टदेव उसको भी माया पिछड़ती है,
पहले को खाती नहीं है लेकिन हिलाई देती है, इसलिए भक्ति मार्ग में गीत भी बनाए हुए हैं, माया नजरिया मारी गई है, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई है। क्यों कि एकदम जब सृष्टि का आदि होगा तो पहला पहला विष्णु कौन होगा? संगमुखी लक्ष्मी नारायण पहला पहला विष्णु हुआ। एकदम सृष्टि के आदि में जो विष्णु है तो एकदम सृष्टि का जब अंत होगा संगम शुरू होता है तो वो दोनों आत्माएं किस रूप में होनी चाहिए? एक दूसरे से लड़ाई लड़ने वाली होनी चाहिए पति पत्नी के रूप में, या एक दूसरे की सहयोगी होनी चाहिए? सहयोगी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। अभी मेरा 69 में ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले।
अंतिम दिन में बताया हुआ कि अष्टदेव बाप का साथ छोड़ देते हैं 84वें जन्म में, जो यज्ञ में बाप 42 में बाबा ऐसी बात हुई जो बाप अकेला रह गया और सारे रास्ते छोड़ दिए बाप,
ठीक है
बाबा 42 के बाद से और आज तक जो अष्टदेव प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं या जो दूसरी मन का प्रत्यक्ष हुई है उसमें उनका 84वां जन्म कहा जाए, क्योंकि जब निश्चय बाप के होगा प्रत्यक्षता होगी तब उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म कहा जाएगा,
ठीक है जब उनके अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होने लगे, उनको अपने पार्ट की अनुभूति होने लगे, जैसे राम वाली आत्मा को अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होती है पहले पहले, ऐसे ही अष्टदेवों को भी अपने पार्ट की अनुभूति होने लगे।
प्रत्यक्षता से पहले और 42 के बाद अभी उनका 84वां जन्म कह रहे उनका
42 में तो ज्ञान ही नहीं था ना,
बाप का साथ तो छोड़ दिया ना।
हाँ, वहाँ तो वो ज्ञान छोड़ दिया और बाप ने भी ब्रह्मा को छोड़ दिया,
उसमें 84वां जन्म तो उसमें से स्टार्ट उनका,
बाप भी तो फेल हो गया,
जो भी अष्टदेव है 84वां जन्म उसमें से उनका स्टार्ट हुआ, जन्म के अंत में बाप का साथ छोड़ते हैं और इस समय तक भी 84वां जन्म का चल रहा है।
ये तो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है।
आदि में तो विष्णु छोटी माता
है,
आदि में बताया कि विष्णु की आत्मा छोटी माता थी,
विष्णु एक से बनता है या दो से?
युगन जोड़ा का
तो युगन जोड़े को विष्णु कहा जाता
है, उससे उस समय ब्रह्मा का जन्म हुआ था
है।
तो 68 में कौन से विष्णु?
असल उनहत्तर में वो आत्मा जन्म नहीं ले गई, जो सम्मुखी लक्ष्मी नारायण बनने वाली है।
नारायण तो है नहीं है बाबा, क्या थे?
नारायण नहीं है, नारायण संक्षेत्र में प्रत्यक्ष हुआ, नारायणी भी संक्षेत्र में प्रत्यक्ष हुई, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी बच्चा पहले जन्म लेता है या पहले गर्भ में प्रवेशता होती है?
प्रवेशता होती है,
तो प्रवेशता हो गई।
नारायण तो बोलते नहीं ब्रह्मा के सामने, सामने तो बोलते नहीं ना बाबा, नारायण वाली आत्मा।
ब्रह्मा बाबा कब नहीं थे और कब नहीं है?
साकार में नहीं
कर रहा हूँ, साकार में उनके लिए होता है जिनकी आकारी आंखें बंद होती है। ब्रह्मा बाबा के लिए थोड़ी कहेंगे, ब्रह्मा बाबा की आंखें तो अभी भी है, हम बच्चों को देख रही है।
बाबा मास्टर गौरव में सबसे पहला जो मंत्र है वो सूर्य या बृहस्पति के नाम से,
अष्टदेव
का पहला मंत्र है ना,
हाँ।
उन्हें सूर्य या बृहस्पति कहा जाता है?
सूर्य नहीं, सूर्य तो शिव है,
वो बृहस्पति है।
बृहस्पति, बृहस्त माने दुनिया में जितने भी पति हैं, उन पतियों के बीच में सबसे बृहस्त बड़ा।
दूसरा जो मंत्र है
हाँ।
वो किस नाम से जाना जाएगा?
बता तो दिया काशी नगरी,
वो ग्रह में नहीं हुआ
ना,
ग्रह में नहीं हुआ ना।
वो ग्रह तो तब बनते हैं जब बच्चे भी हो, पत्नी भी हो, पूरा परिवार हो, तब ग्रह ग्रह घर ग्रह तो बनता है, एक आत्मा से कैसे बन जाएगा? और
सूर्यवंशी की माँ हो गई तो उनके परिवार तो उनके साथ होगी ना, सूर्यवंशी की माँ हो गई तो बाप भी है, उनके परिवार तो साथ में है ना,
तो परिवार है तो प्रत्यक्ष कहाँ है?
प्रत्यक्ष तो बाद में हो जाएगा,
हो जाएगा तो मान लेंगे।
अभी काशी नगरी है, बाद में जाके ग्रह का नाम चेंज हो जाएगा
है?
बाद में नाम चेंज हो जाएगा क्या?
किसका?
काशी नगरी मतलब ग्रह अभी ग्रह नहीं है।
एक एक आत्मा के पार्ट जो बजे हैं उनके अनेक अनेक नाम हैं शास्त्रों, जैसे ब्रह्मा बाबा का नाम इंद्र भी है, ब्रह्मा बाबा का नाम चंद्र भी है, ब्रह्मा ब्रह्मदेव भी है, नाम तो अलग अलग है ना।
जो अष्टदेव है रुद्र वाला के चार और विजय वाला के चार आंखें तो उनके जोड़ी बनेंगे, तो बाबा ने कैसे में बोला कि चारों का जोड़ी मतलब एक में मर्ज हो जाएंगे चारों में, तो
संस्कार
मर्ज हो जाएगा मतलब
संस्कार एक दूसरे के मिलकर एक हो जाएंगे
तो मतलब दोनों मिलके एक ही संस्कार बनेगा ना, तो चार हो गए ना बाबा, चार हो गए ना, आठ कहाँ हो गए?
क्या
एक मानेंगे ना,
वासवा संस्कार से एक ही मणका माना जाता है ना विजय माला का, विजय माला में 108 दाने हैं कि नहीं, लेकिन ऊपर का दाना युगल दाना है, तो सारे दाने युगल दाने हैं, यह समझे जाते हैं युगंधा में, समझे जाते
हैं। बोला ना एक शिवालय रह जाएगा, बाकी जो मंदिर मस्जिद जो भी बना वो सारे टूट जाएंगे,
ठीक है?
तो वो गीता पाठ करने के लिए बोला कि ये छोटे छोटे जो मिनी मधुबन है ये काम,
जो भी मिनी मधुबन है या जो भी गीता पाठशालाएं हैं उनको चलाने वाले एक संस्कार के हैं, यह संस्कार भिन्न भिन्न है, अलग अलग संस्कार के हैं, अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, अलग अलग उनकी धारणा है, एक जैसी धारणा तो किसी की हो ही नहीं सकती, इसलिए जो धारणाओं में सूर्यवंशियों के किसी भी तरीके से विपरीत जाते हैं उन्हें टूटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब विनाश होता है तो ज्योतिषियों की भी मान्यता है कि नौ ग्रह आपस में टकराते हैं। उन नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो उससे टकराने से क्या रिजल्ट आएगा? उसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसमें तो मुकर्रर रूप से छत्र छाया के रूप में सुप्रीम सोल प्रवेश है। बाकी दूसरे टकरा टकरा के छेड़ हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे। उनकी जो धरणियां हैं, धर्मखंड हैं, वो भी समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, धर्म ही खलास हो जाएगा। जो झूठी धारणाओं पर वो डटे हुए हैं वो धारणाएं सब खलास हो जाएंगी। ईरानी भी खलास हो जाएगी, उनकी मतें भी नहीं रहेंगी, कुल के कुल खत्म हो जाएंगे।
तो
सत आता है, क्या करना चाहिए? सत के लिए क्या करना चाहिए? पहचानना है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरलीधर कोई दूसरा थोड़े ही है, वो तो बिंदी है। वो बिंदी जो निराकार है वो हमको क्या देती है साकार में? मुरली ही तो देती है। तो जो मुरली है, जो वेदवाणी कही जाती है, ब्रह्मा के मुंह से वेद निकले, वो ही सत्य है। उसी सत्य को फॉलो करो।
देवता में नहीं कहते भक्ति मान पिता भगवान श्री शंकर बोले मां देव, भक्ति मान में नहीं कहते देव देव मां देव, तो उनसे शंकर भगवान के होता।
शंकर भगवान होता भी है
देवता में? भक्ति मान में बता देने
देव देव महादेव का मतलब है ब्रह्मा देव, फिर उससे ऊपर विष्णु देव, फिर उससे ऊपर महादेव, और तीनों भगवान नहीं है, तीनों देव ही हैं। क्या बोल रहे थे?
मैं बोल रही जैसे कोई गलत व्यवहार या कुछ ऐसे वो करते हैं ना बाबा, तो हम भला उसको कुछ बोलते नहीं है, उसके लिए बुरा सोचते भी नहीं है, लेकिन अपने आप को बड़ा महसूस होता है, अपने आप को तकलीफ होता है, उससे कैसे बचे?
समझ लेना चाहिए कि कोई ने हमको दुख दिया, दुख देने वाली बात की है, तो हमारा किया हुआ ही रिटर्न हुआ है या उसने कुछ अलग से नया कर दिया? हमारा किया हुआ हमको रिटर्न कर दिया।
ज्ञान की उस समय तो बहुत बड़ी चिंता करते हैं, फिर बहुत देर बाद वो कंट्रोल में आता है ना।
तो समय पर ज्ञान काम नहीं आया तो वो ज्ञान किस काम का? बंदूक तो है हमारे पास, शेर ने हमके हमारे ऊपर हमला कर दिया, अब उस समय न हमें बंदूक की याद आई और न बंदूक में डालने वाली गोली की याद आई, तो वो तो बेकार हो गया ना। इसका मतलब छेद है गड़े में। घड़ा कौन सा है? बुद्ध रूपी घड़ा है, इसमें छेद हो जाता है तो टिकता ही नहीं। समय पर बाप काम ना आई, चीज काम ना आई तो उसका फायदा ही क्या है?
ब्रह्मा की आयु को प्रजापित ब्रह्मा की आयु कहेंगे ना? ब्रह्मा की आयु को प्रजापित ब्रह्मा की आयु कहेंगे ना? ब्रह्मा की आयु माना प्रजापित ब्रह्मा की आयु, वो तो जो इसी समय होगी प्रजापित ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी।
प्रजापित ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी,
तेलंगा की वाणी है प्रातः क्लास।
हाँ तो खत्म नहीं हुई, प्रजापित ब्रह्मा की आयु खत्म हुई या नहीं हुई? अरे इसका मतलब तुम ये समझे बैठे कि प्रजापिता ब्रह्मा की आयु चल रही है, है? चल रही है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। कब? छत्तीस में खत्म हो गई। 7 साल की एज में सन 36 में प्रवेश हुआ, 40 साल ऐड हो गए, 100 साल की आयु ब्रह्मा का था। ब्रह्मा की आयु सो प्रजापिता ब्रह्मा की आयु। और
बाबा गीता पाठशालाओं में संगठन क्लास कर सकते हैं जी?
गीता पाठशालाओं में ही संगठन क्लास करना है सबकी सम्मति से।
पहले करते थे, बंद कर रखी वो।
क्यों? पूछो उनसे क्यों बंद कर दिया है?
पहले बातें डगर करते थे और
पहले करते थे, यूनिटी बनती थी अर्थात संगठन बनता था, अब नहीं करते हैं, यूनिटी नहीं बनती है, इसका मतलब प्योरिटी प्योरिटी हीन हो गई, फिर से करना शुरू कर देना चाहिए। है?
माया खा गई।
माया क्या खा गई? यूनिटी को। है माया यूनिटी को खा जाती है, माना प्योरिटी को खा जाती है। माया रावण कौन? मुरली में पूछा रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, गीता पाठशालाओं में भी गुरु बन के बैठते हैं गद्दार।
अरे क्रोध आता है तो लौकिक में क्या खाना चाहिए? क्रोध कंट्रोल नहीं होता है तो लौकिक में ऐसी चीज क्या खाना चाहिए जिससे क्रोध हमेशा कंट्रोल हो जाए?
बाबा ने संकल्प तो बता दिया, कौन से संकल्प का भोजन करना चाहिए?
स्थूल में।
स्थूल में
शरीर के लिए।
अरे अभी तो मुरली में बताया बाबा सब बाबा और बाबा के बेहद के बच्चे बेहद की बातें करते हैं, तो ये हद की बातें कहां से ले आए? खाना पीना दाम बाबा ने तो बता दिया तुमको, बाबा ने बता दिया कौन सा संकल्प का भोजन करना चाहिए। जब क्रोध आए तो अपन को चांडाल का जन्म समझना चाहिए, क्रोध नहीं आया हमारा कौन सा जन्म हुआ? चांडाल का जन्म हुआ, शूटिंग हो गई।
जितनी बार क्रोध आएगा उतनी बार चांडाल का जन्म मिलेगा।
बाबा ने कहा मना किया कि जो बच्चे बच्चे जो होते हैं और उन पर माँ बाप बच्चे पर माँ बाप क्रोध करते हैं तो वो दिखावे का क्रोध होता है या असली क्रोध होता है? तो दिखावे का क्रोध होता है।
बच्चे उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बाबा ने मना किया क्रोध करने के लिए, फिर भी आप कर रहे हैं।
हाँ हाँ लेकिन अगर क्रोध नहीं करेंगे और तुम उल्टा ही काम करेंगे तो घाटा किसका होगा?
बाबा शंकर के गले में सांप क्यों बताया हुआ है?
अरे तुमने किसी मीठी बात वो भी पूछ ली, गले में नहीं दिखाया है, कमर में भी दिखाया है, गले में भी दिखाया है, दाई और बाई बाजू में भी दिखाया है और सर के ऊपर भी दिखाया है। कितने सांप हैं उनको जो दिखाए जाते हैं? 5 सांप हैं। उनमें भी शास्त्रों में जो प्रसिद्ध है वो है मोह सकल व्याघ्र कर मूला। ये मोह की फांस है ये सर्प जो गले में है। और मोह किससे पैदा होता है? मोह पैदा होता है अपनी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। यही अगर नष्ट मोह हो जाए तो जग जीत लिए, बाकी तो काम विकार का सर्प भी है कमर में, क्रोध विकार का सर्प भी है भुजा में, लोभ विकार का सर्प भी है बाई भुजा में, मोह का तो गला बताई दिया, अहंकार का सर्प भी है जो सर के ऊपर दिखाया जाता है।
अगर बाबा कोई ज्यादा ही अति करता हो उस पर क्रोध नहीं करें तो फिर क्या करें? कोई अगर ज्यादा ही अति करता हो अपने साथ,
हाँ मार क्या कर, पिटाई करने के लिए ऊपर आ जाए
क्या करें? घर के पड़ोस में ही रह लिया और अपने घर के पड़ोस में ही है तो क्या करें? घर खाली कर दे क्या?
घर खाली क्यों कर दे? उस समय क्रोध 24 घंटे थोड़े ही बना रहेगा।
समय
जिसको क्रोध आता है उसके ऊपर फूल चढ़ाते रहो,
चढ़ा दो छोड़ दो,
उसको बार बार फूल चढ़ाओगे तो खुश हो जाएगा।
और क्या क्या गाना करे मेरे ढाका कह रखे मैंने पिछली बार ढा जाएगा तो अगले ढा जाएगा कहीं इस पर शर्मा घोषणे के लिए तुम बढ़ गई हो इसमें फंस गए।
क्या बोला? वैसे रिपीट करो। क्या बोला?
ये बोला ही
जो अभी बोला वही रिपीट करो।
यही तो बोला
अभी, रिपीट करो जो बोला।
हाँ यही तो बोला।
हाँ क्या बोला?
ईट पत्थर मारे भी डा दे अगली पिछली ईट वगैरह मारे गाड़ी दे बंपर चाहिए इसमें मार कैसे
बाबू
माता ज्ञान से चलती है, अमृत वेला भी करती है उठती है, लेकिन मन दुखी है तो वो माँ मृत्युंजय का मंत्र पढ़ती है। यदि बाबा से योग नहीं लग रहा क्या करूँ? ज्ञान का नशा पूरा है।
ज्ञान का नशा पूरा कहाँ से आ गया?
यदि मुझे मैं शिव बाबा गई तो मंत्र मैं यही पढ़ती।
शिव बाबा का मंत्र कोई जपने का है मुझसे?
मन में जपती रहती है, वही कहती योग नहीं लगता, मन में योग नहीं लगता।
समझाओ कि शिव बाबा सूक्ष्म है उसकी याद भी सूक्ष्म होनी चाहिए, वाचा तो स्थूल है, वाचा कैसे पहुंचेगी? मन जो है वही इंद्रियों को चलाने वाला है। मन अति सूक्ष्म है, शिव आता है तो किसको कंट्रोल करता है? है कहता है मन बनाओ भव, मेरे में मन लगा के मन को कंट्रोल करता है। अब मन कौन है? ब्रह्मा बाबा मन है, پورا ہی کنٹرول میں آ جائے تو ساری اندریاں کنٹرول میں ہو جاتی ہیں. نہیں تو وہ بھگوان کو کس نے کہا جاتا ہے؟ وہ بھگوان کا بھیا ہے. کون؟ کرشن کا نیا. جسے بلرام کہا جاتا ہے, ہلدر. اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ ہل چلا چلا کے دھرنی کو چیرتا ہی رہے گا. وناش ہی کراتا رہے گا. اس لیے وہ من کنٹرول کرنا ضروری ہے.
بابا یعنی آتما تو سوٹ کے وغیرہ کرتے ہیں دنیا میں, اس کا اثر پڑ سکتا ہے؟
وشواس کی بات ہے. کسی کو وشواس ہے پکا کہ ہم شیو بابا کے بچے, ہمارے اوپر کوئی کا اثر نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. کچا پڑ گیا تو اثر ہوگا. وشواسم فلدائکم. اپنا اپنا نشا ہے.
بابا کنیا جو بڑی ہو یا چھوٹی, ان کو سرینڈر کرنا اچھا ہے یا پھر گھر میں ہی رکھنا اچھا ہے؟
جو گرہستھی ہو اور چاہے گرہستھی نہ ہو, گرہستھی چھوڑ کر کے آ گئے باپ کے گھر میں رہ کر کے لوکک سمبندیوں کو چھوڑ کے آ گئے, ایسے پریکٹیکل میں سرینڈر ہو. چھوڑ کے آ گئے وہ بھی سرینڈر. اب چھوڑ کے نہیں آئے, اپنے گھر گرست میں رہتے ہیں لیکن جیسے بابا چلاتے ہیں ویسے ہی چلتے ہیں تو وہ بھی سرینڈر. مانے اپن کو سرینڈر سمجھیں, ایسے سرینڈر ہونے والے راج کل میں آئے گی. سولہ ہزار 108 کے پریوار میں آئے گی. راجائی لینی ہے تو سرینڈر ہونا پڑے. کوئی جلدی سرینڈر ہو جائیں گے, کوئی ناک رگڑ رگڑ کے سرینڈر ہوں گے, صرف دکھاوے کے لیے کاغذ پہ سرینڈر ہو جائیں گے, باقی اندر سے سرینڈر نہیں ہوں گے. باقی باپ کا ورودھ یہ ہے کسی ایشوری سیوا میں صرف جو سرینڈر ہوتے ہیں وہ راجائی کا ورثہ پانے کے لیے سرینڈر ہوتے ہیں. باقی سرینڈر نہیں ہے تو بڑے بڑے ساہوکار بن سکتے ہیں. ساہوکاروں کے پاس بھی تو بہت دھن سمپتی ہوتی ہے. وہ بڑے بڑے ساہوکار بھی تو راجاؤں کے ساتھ گدی نشین ہوتے ہیں, کرسی ڈال کے بیٹھتے ہیں راج سبھا میں. ایسے بھی تو ساہوکار ہوئے ہیں جنہوں نے راجاؤں کو اتنی دھن سمپتی دی جس کے آدھار پر انہوں نے راجائی چلائی. جیسے بھاما شاہ نے اتنی دھن سمپتی رانا پرتاپ کو دے دی کہ وہ ورسوں تک راجائی چلاتا رہا. جیسے بابا بولتے ہیں کہ ستیوگ کا جو آخری نارائن ہے وہ لون لے کر کے اپنی راجائی چلاتا ہے. رام والی آتما اتنا لون دیتی ہے جو اس لون میں اس کی راجائی ڈوب جاتی ہے. نارائن کا راج خلاص. और राम का राज्य शुरू। हम जो चाहे सुनो, साहूकार बनना चाहो साहूकार बनो, राजकुल में आना हो राजकुल में आ जाओ, राजकुल में भी नंबर मार रहे हैं। कोई तो 21 जन्मों में सिर्फ लास्ट जन्म में एक बार प्रिंस या प्रिंसेस बन के रह जाएगी, राजा फिर भी नहीं बनेंगे, और बाकी के जन्म में दास दासी बनते रहेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसे भी कर्म करने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? तो उनके लिए बाबा ने कहा कि ऐसे दास दासी बनने से तो अच्छा प्रजाकुल में जाए और साहूकार बनकर के रहे। साहूकारों के भी कोई कोई के इतने ठाट बाट होते हैं, बड़े महल माड़ियां होते हैं, इतनी दास दासियां होते हैं जितनी कोई राजा के यहां भी छोटे मोटे के यहां नहीं होंगी।
दासदासी की शूटिंग इस समय कैसे होगी?
दासदासी की शूटिंग इस समय कैसे होगी? अब सरेंडर हो गए और जो बाप ने कहा वो इनकार कर दिया तो क्या बनेंगे? दासदासी बनेंगे।
बाबा छोटी कन्या जो है वो माँ बाप से पहले कभी दूर नहीं रही और उनको सरेंडर कितनी उम्र में करवाना चाहिए?
करवाना चाहिए, कोई कहने जाता कि कराओ
नहीं, फिर भी कन्या भी सरेंडर
करवाना है कि बाकी खत्म करवाना माने भीख मांगना, हमें कन्या दे दो। अरे कन्या की मांगनी मुसलमानों में होती है या भारतीय धर्म में होती है? मुसलमान धर्म की शूटिंग करनी है क्या? जिसे अपना भाग्य बनाना हो वो अपने तरीके से अपना कार्य करे। बाबा ने तो बोल दिया एक कन्या सौ ब्राह्मणों से उत्तम है, सौ भाई सरेंडर होकर के कार्य करें अपने को सरेंडर समझ करके और एक कन्या अर्पण होकर के कार्य करें तो एक कन्या की प्योरिटी सौ ब्राह्मणों के बराबर है। वेदांत विधिगण बाकी सरेंडर कराने की तो बात ही नहीं।
छोटी कन्या सरेंडर होने की उम्र कितनी होगी?
नौ साल बता तुझे। भक्ति मार्ग में भी सन्यासी लोग कन्याओं को नव दुर्गा पूजन में पूजन के लिए बुलाते हैं, भोजन आदि खिलाते हैं, तो नौ साल की कन्या को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी बुद्धि दूषित होती जाती है।
जो आत्मा नारायण है वो राम भारी आत्मा से तो ज्ञान नंदी को कर्जा लिया तो देता जी में मतलब वो तो सीता छोटी माँ तो राम बनेगी ना
है?
सीता जी में छोटी माँ तो राम बनेगी ना तो ज्ञान नंदी का लोन जो आत्मा नारायण ने लिया तो राम भारी आत्मा से लिया।
तो लिया तो क्या हुआ? राम भारी आत्मा ने पवित्र दुनिया की स्थापना तो नहीं कर पाई? कर पाई? कर पाई? नहीं कर पाई तो किससे सहयोग लिया? साझीदार किसको बनाया? अर्धांगिनी किसको बनाया? लक्ष्मी को अर्धांगिनी बनाया तो आधा हिस्सा देना नहीं पड़ेगा?
उधर तो उनको पूरा राजा ही देना पड़ेगा ना अठवन को।
अरे जब आधा हिस्सा दे दिया तो एक जन्म में स्त्री बनोगे एक जन्म में पुरुष बनोगे। अरे संगम युग में तुम नारायण बन गए तो जब आगे का जन्म आएगा ऊंचा सा ऊंचा तो उसमें उसको हिस्सा नहीं दोगे?
तो जिससे लिया उसको देंगे ना
है?
जिससे हम कर्जा लिया तो उनको ही देंगे ना।
लक्ष्मी से कर्जा नहीं लिया? लक्ष्मी से प्योरिटी का कर्जा लिया या नहीं लिया? फिर हमें क्या दिखाते हो प्रसाद? इसे तो आराम से बैठे हुए
जल्दी जल्दी आते नहीं, इसलिए
जल्दी जल्दी आते नहीं। जल्दी जल्दी आते नहीं तो जल्दी जल्दी ऐसा माहौल बनाओ ब्राह्मणों के परिवार का, जो बाबा एक जगह बैठ जाए, रोज मिलते रहो।
तो बाबा के साथ 2.5 साल भी एक किया संघ, माया के साथ भी आधा काल भी संघ किया, तो माया छूटती क्यों नहीं है? वो
माया छूटो पंगे लेने की बात करते हैं, एक बात पूरी करो पड़े।
बोला है कि आर्थिक स्थिति में रहेंगे तो अपने जन्मों को जान सकते हैं, तो आर्थिक स्थिति में रहेंगे फिर वो तो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं उसमें, तो बिल्कुल तो उसमें तो संकल्प बुद्धि में चलाना है या बाबा को याद करना है, कैसे जानेंगे?
बाबा चैतन्य है या जड़ है?
चैतन्य।
चैतन्य को याद करने से बुद्धि जड़ बनेगी कि चैतन्य बनेगी?
आर्थिक स्थिति
आत्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य को याद करेंगे तो चित्त ही बनेंगे, चैतन्य ही बनेंगे। वो सन्यासी जो बैठते हैं कुंभक लगा करके, 3-3 दिन बैठे रहते हैं, ना सांस लेते हैं, ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, वो दिल में चले जाते हैं, उन्हें आत्मा का परिचय नहीं है, उनका पुरुषार्थ बेकार है। हम तो बीज रूप स्टेज में जाते हैं, वो आत्म की स्थिति अगर 24 घंटे बनी रहे तो 24 घंटे लगातार उसको अपने 84 जन्मों का साक्षात्कार ही होता रहेगा बुद्धि से, इतनी महीन बुद्धि बन जाएगी।
बाबा स्वर्ग में तो सुख होता है ना, और आत्मा जब स्वर्ग स्थिति में चली जाते हैं, मतलब जो स्वर्ग में जाएगा वो पहले स्वर्ग स्थिति में जाएगा, वही स्वर्ग में जाएगा ना। स्वर्ग स्थिति मतलब सुख तो इंद्रियों से भोगा जाता है, जब स्वर्ग स्थिति में चले जाएंगे तो इंद्रियों के बाहर रहेगा नहीं, तो सुख और दुख का फीलिंग कैसे आएगी?
अरे
आत्मा स्वयं सुख स्वरूप नहीं है, इंद्रियां होने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। अतीन्द्रिय सुख किसे कहा जाता है? अतीन्द्रिय सुख में इंद्रियों की जरूरत है?
वो तो संगम में होगी ना, लेकिन तो
संगम पर ही रहना है ऊंचे से ऊंचा सुख। सतयुग का सुख इतना ऊंचा नहीं होगा, सतयुग में भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा, संगम में तो भूत तो भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में पूरा ज्ञान होता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, 4 युगों में इतनी प्राप्ति नहीं होती है जितनी इस 1 युग में प्राप्ति होती है।
बाबा भक्त निवास में कृष्ण के 8 पत्नी अधिकाई है, तो बेहद में कौन कौन?
8 धर्म है तो 8 ही खास विशेष राजाइयां हैं। राजाएं जब युद्ध जीतते थे तो जो विदेशी राजाएं होते हैं वो आक्रमण करते हैं, तो जिन राजाओं के ऊपर आक्रमण करके युद्ध जीतते हैं वो बोले कि घरवालियों को अपने कब्जे में कर लेते थे या नहीं? कर लेते थे, उनका है हिंसक युद्ध है और बाप का है अहिंसक युद्ध। इस अहिंसक युद्ध में भी यही हाल होता है, जो पावरफुल राजा है वो प्योरिटी, सच्चाई, ज्ञान की तीव्रता के आधार पर अपने कंट्रोल में ले लेता है। अकेला राजा नहीं होता कभी, राजा रानी के साथ होता है या अकेला होता है? रानी के साथ होता है। जैसे घर गृहिणी के साथ होता है या बिना गृहिणी के घर हो जाता है? गृहिणी ही घर कही जाती है। ऐसे ही रानी ही राजा ही है। रानी को नहीं जीता लेकिन सारी राज्य को जीत लिया। रानी जैसे राजधानी है, राजा की धारणा शक्ति है। हाँ, सिर्फ हिंसक और अहिंसक का फर्क है। वो विदेशी राजा है हिंसा से जीत पाते थे और यहां बाप भी विदेशी बनकर के आया हुआ है लेकिन लेकिन हिंसा से जीत पाता है, दिलों के ऊपर जीत पाता है या स्थूल रूप में जीत पाता है? दिलों के ऊपर जीत पाता है। तो आठ धर्म की आठ पटरानियां हैं। जो पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर के पट्ट में गिरती है। नौवीं महारानी है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में गिरती नहीं है, ऊंची स्टेज पकड़ लेती है। इसलिए महारानी राधा गाई हुई है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, ये तो बोला, कभी ये नहीं बोला तुम सब राधाएं हो। क्यों नहीं बोला? कोई कारण होगा, क्या कारण है?
संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेती हो?
नहीं, राम आने राम, धाम आने धारण करने वाली, मैंने राम को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण करने वाली। संकल्प मात्र भी नहीं आता कि छोड़ छाड़ करके हम अपना रास्ता पकड़ेंगे। स्वप्न में भी नहीं आता। जिसको दिखाया गया है कि राम ने जिस धनुष को तोड़ा था, उस शिव धनुष को सीता ने अपने बाएं हाथ में उठा लिया। वो धनुष कोई दूसरी चीज नहीं होती है। इस शरीर से जो पुरुषार्थ का लचीलापन है वो ही धनुष है। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बोला, उनमें रामकृष्ण की आत्माएं भी आ जाती है। फिर भी उनको धारण करके रखना, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसी पवित्र बुद्धि वाली ही महारानियां बनती है, जो और रानियों की अपनी बहन की तरह पालना करती है, कोई ईर्ष्या देश नहीं। नहीं तो विकारी बुद्धि हो तो ढेर की ढेर ईर्ष्या द्वेष और सौतिया डाह पैदा हो जाता है। चलो भूख लगी आई, शांति।